તારીખ 15/9/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 24.
અર્થાત શ્રદ્ધામાં વક્રતા ન કરવી, સ્વીકાર કરવામાં શ્રદ્ધામાં વક્રતા નહીં કરવી, એ સમ્યક દર્શન રૂપ સરળતા છે. એને સમ્યક દર્શન પૂર્વક સરળતા કહેવામાં આવે છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપને જેમ છે તેમ ન માનતા, અસરળતા કરીને પોતાને સ્વયંને પુણ્ય પાપ વાળો માનવો કે અનંત કપટ છે, અનંત કપટ છે. હું પુણ્ય કરવા વાળો તે અનંત કપટ છે, અનંતાનું મંદિરની માયા થઈ ગઈ ત્યાં. કોઈ પરના સંઘથી કે પુણ્ય પરિણામથી આત્માને લાભ માનવો તે અનંતી વક્રતા છે, અથવા તે અનાર્યતા છે. આર્ય અને અનાર્ય શબ્દનો સરળતા આર્ય જીવને હોય છે, અસરળતા કરે છે તે અનાર્ય છે. આપણે જંગલી જેને કહીએ છીએ, જંગલમાં રહેનારા પશુ તે જંગલી, અને અનાર્ય કે વૃત્તિ વાળા અસરળ પરિણામ વાળા પણ અનાર્ય કહેવામાં આવે છે. આર્ય શબ્દ તે અનાર્ય છે. આર્ય એટલે સરળ, જીવું સહજ નાયક મૂર્તિ આત્મ સ્વરૂપ છે એવું જ માનવું, જરા પણ વિપરીત ન માનવું, તે સરળતા છે. અને તેની સમજણમાં આડાઈ એટલે વિપરીતતા કરીને વિપર્યાસ, એ પણ અસરળતાનો પ્રકાર છે. મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ ચાર કષાયમાંથી માયા કષાયમાં જાય છે. તેમાં જાય છે માયાની સાથે વિપર્યાસ આવે છે કે આડાઈ કરીને કોઈ વિકલ્પ કે વ્યવહારના આશરે લાભ માનવો તે અનાર્યતા છે, કોઈની બાંધે પણ અનાર્યતા છે. વ્યવહાર રત્નત્ર પણ રાગરૂપ છે તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. આત્મ સ્વરૂપ નાયક તત્વ તો કોઈની પાપ રહી છે, તેને રાગથી પરાશ્રય ભાવથી લાભ માનવો તે અનંત કપટનું સેવન છે. આ રીતે ધર્મના ક્ષેત્રમાં વિપરીત માન્યતા અને વિપરીત સમજણ રહે છે, તે જ માયાચાર છે, અનંતાનું સમજણ થાય છે. તેનો ત્યાગ કરવો દર્શન પૂર્વક વિતરાગી સરળતાને પ્રાપ્ત કરવી તેને આર્યવ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આર્યવ ધર્મ વિશે સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યા. ज्ञान भाव में अपना अपना हित और अहित का ज्ञान नहीं होने से किस भाव से मुझे नुकसान है, किस भाव से मुझे लाभ है आत्मा को, इसका परिज्ञान नहीं होने से वो अपने को नुकसान होवे ऐसा परिणाम कर बैठता है, तो कैसे भी दुर्गति में चला जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने ये बात कही कि तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर, तो कुछ थोड़े भव में तुझे निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। मोक्ष मार्ग में आने से इसका फल मोक्ष अल्प भव में होता ही है। अगर जीव मोक्ष मार्ग में नहीं आता है तो परंपराए दुर्गति में जाकर के वो निगोद में चला जाता है। दो हजार सागर से ज्यादा त्रस पर्याय की स्थिति नहीं है। त्रस में तो दो इंद्री भी आ गया, दो इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय त्रस की पर्याय जो है उसका ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर है। इसमें मनुष्यपणा या कहीं भी संगनी पंचेंद्रिय पणा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष मार्ग की नहीं हुई तो इस जीव को निबोध में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है, फिर निबोध में से अनंत काल के बाद निकलता है। ऐसा एक जोखिम है, उसको मिटाने के लिए शीघ्रता अति शीघ्रता से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने नहीं चाहिए, कर्म की प्राप्ति करने ये ज्ञानियों का उपदेश है। चलता अधिकार में समय सार समर अधिकार के गाथा 181 गाथार्थ चलता है। गाथार्थ में ये कहा कि उपयोग मैंने ज्ञान की पर्याय ज्ञान की क्रिया जो जानने रूप होती है उसमें क्रोधादि कषाय का अभाव है, कर्म का परमाणु और उसका उदय का भी अभाव है, और शरीर आदि संयोग देह मन वाणी मकान घर कुटुंब परिवार सचेत अचेत कितना भी जो संयोग है उन सभी प्रकार का ज्ञान की क्रिया में अभाव है। ज्ञान में नहीं है ऐसा अविपरीत ज्ञान। इस ज्ञान को कैसे कहते हैं कि ऐसा अविपरीत ज्ञान, मैंने ज्ञान राग से भी भिन्न है, रुदादि भाव से भी भिन्न है, कर्म का उदय से भी ज्ञान मैंने आत्मा भिन्न है, और शरीर आदि संयोगिक पदार्थ से भी ज्ञान स्वरूपी आत्मा भिन्न है। ऐसा भिन्नपणे का ज्ञान को अविपरीत ज्ञान कहते हैं यहाँ पर आचार्य महाराज। ऐसा ज्ञान जब जीव को होता है, ऐसा ज्ञान होता है मतलब ऐसा समझने पूर्वक ऐसा अनुभव ज्ञान होता है, ऐसा लेना है क्या, वरना तो ये कहेंगे कि ऐसा समझ में तो आ गया तो हमको अविपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ, कि अनुभव ज्ञान को ही यहाँ पर ज्ञान कहने में आता है। सिर्फ समझ में आवे उसको सम्यक ज्ञान कहते नहीं है। ऐसा अनुभव ज्ञान जीव को होता है मतलब राग होता है तो राग से भिन्न ज्ञान में आत्मा का अनुभव, कर्म का उदय होने पर भी अनुकूलता प्रतिकूलता से भिन्न में हूं, मुझे कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है ऐसा अपना ज्ञान हुए, ઉપદેશે ભિન્ન ઓર શરીર આદિ પદાર્થો મે પરિવાર આદિ મે મેરાપણા નહીં ભાષ્યમાન હોવે. ક્યા યે મેરા પુત્ર હૈ, યે મેરા શરીર હૈ, યે મકાન મેરા હૈ, એસા જો ભી કર્મો કા કર્મ કા ઉદેશ્ય જો ભી સંયોગ પ્રાપ્ત હૈ ઉસમે મેરાપણા નહીં હોવે, મમત્વ નહીં હોવે, ભિન્ન જ્ઞાન મે આત્મા કા અનુભવ જ્ઞાન રહેવે, ઉસી કો અવિપરીત જ્ઞાન કહેને મે આતા હૈ. ऐसा ज्ञान जब जीव को होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा या आत्मसात्मपूर्ण क्या. अभी तक उपयोग 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 कितना ही लेते थे आचार्य महाराज, क्या कहते थे, उपयोग मैंने ज्ञान की क्रिया. अब ये उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा ऐसा कह दिया. कैसा है आत्मा, उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा है. तब यह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग सिवा सिवा उपयोग अन्य कुछ भी भाव को करता नहीं. उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी उपयोग स्वरूपी आत्मा हूं और सहज जानन क्रिया उतना ही मेरा कार्य है. मेरी स्वरूप मर्यादा जानन क्रिया में समाप्त होती है. इससे आगे रागादि और परद्रव्य में मेरा कहीं भी अस्तित्व नहीं है, मेरी मौजूदगी नहीं कहीं पर. मेरे से बाह्य है, मेरे से भिन्न है. सिवा जानन क्रिया मुझे किसी के साथ लेना देना नहीं है, न लाभ है न नुकसान है. उसको भिन्नपणा कहने में आता है. इसलिए उपयोग सिवा अन्य भाव को या अन्य पदार्थ के परिणाम को स्वयं नहीं करता है, ऐसा अनुभव उसको होता है. ज्ञानी हुआ, भिन्न होने से उसको ज्ञानी कहते हैं और उसको ऐसा अनुभव रहता है कि सहज जानन क्रिया उतना ही मेरा कार्य है. इससे आगे रागादि भाव होता है, उसको मैं करता नहीं हूँ, कराता नहीं हूँ, वो भला है ऐसा भी मैं अनुमोदन करता नहीं हूँ. सिर्फ साथ में संयोग में दूसरे पदार्थ हैं, ऐसे रागादि भाव जानने की चीज रहेगी, उसमें अपनत्व होता नहीं, ममत्व नहीं होता, ऐसी एक स्थिति पैदा होती. उस पर भगवान अमृत चंद्र आचार्य जी की एक टीका है. इस टीका में पांच पहलू से बात किया है. पहला जो पैराग्राफ है उसमें पांच पहलू लिया है समझाने के लिए. पहली बात कहते हैं कि खरेखर एक वस्तु है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं. क्या कहते हैं, एक पदार्थ है, उससे दूसरा पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं. क्या कहते हैं, मैं जीव हूं तो शरीर से मेरा कुछ संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं. क्या बात है, संसारी जीव को ऐसा अभिप्राय है, ऐसा परिणमन है, ऐसा अनुभव है कि मैं शरीर रूप हूं. शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूं, शरीर दुबला है तो मैं दुबला हूं, शरीर कुरूप है तो मैं कुरूप हूं, शरीर स्वरूप है तो मैं स्वरूपवान हूं. ऐसा शरीर रूप अपने को मानता है, निकट में है ना, आचार्य महाराज कहते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कुछ संबंध नहीं। शरीर से आत्मा जीता नहीं, आत्मा का जो जीवन है वो शरीर से नहीं है, संबंध ही नहीं शरीर से, ऐसा कहते हैं। संबंध नहीं है तो फिर घर पे जाते हैं तो शरीर साथ रहता है, मंदिर में आते हैं तो शरीर साथ रहता है, ठीक है। इतना संयोग होने पर भी मैं शरीर से भिन्न हूं ऐसा अनुभव करना है, यही ज्ञानानुभव है, यही आत्मानुभव है। आत्मा चैतन्य पदार्थ है, शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ चैतन्य से का कुछ संबंध होता नहीं, विजातीय पदार्थ होने से कोई संबंध नहीं है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कोई संबंध नहीं है, कारण का कारण कहते हैं, क्योंकि दोनों का प्रदेश भिन्न होने से, प्रदेश मैंने क्षेत्र, पहली बात ये, पहला पहलू ये लिया कि एक का दूसरा का संयोग होता है लेकिन संबंध कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि दोनों का प्रदेश भी भिन्न होने से, प्रदेश मैंने क्षेत्र, परमाणु का क्षेत्र में जीव का क्षेत्र नहीं है, वो अजीव क्षेत्र है, और जीव का क्षेत्र है उसमें परमाणु नहीं है, क्योंकि जीव का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो सचेतन है, सचेतन नहीं है। दोनों का प्रदेश भिन्न होने से उन दोनों में आपस में एक सत्ता की अनुपपत्ति है, मैंने एक सत्ता नहीं है, अनुपपत्ति मैंने उत्पत्ति नहीं, उसको अनुपपत्ति कहते हैं, शास्त्रीय परिभाषा है। मैंने एक की अस्तित्व, सत्ता मैंने क्या, अस्तित्व, जीव का अस्तित्व में परमाणु का अस्तित्व नहीं, परमाणु का अस्तित्व में जीव का अस्तित्व नहीं, और ये प्रत्यक्ष रूप में समझ में आता है के जिसको हम मृत्यु कहते हैं उस पर उस क्या होता है कि जीव का अस्तित्व वहां नहीं मालूम पड़ता। डॉक्टर क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट में कि अभी उसमें जीव नहीं है, उसको अंतिम क्रिया कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अस्तित्व है, सारे शरीर के जो अनंत परमाणु थे उसका अस्तित्व वहां है, लेकिन जीव का अस्तित्व। जब जिंदा है आदमी ऐसा बोला जाता है तो क्षीर निर्वित संबंध है, क्षीर मैंने दूध और नीर मैंने पानी, दूध में पानी डाल दिया तो ऐसा लगता है कि दूध बढ़ गया, पानी दूध में मिला गया, मिला दिया, मिलता है क्या दूध में पानी, दूध में पानी मिलता हो तो इतना पानी डाले के डालते ही रहे, लेकिन पानी हमेशा पानी रहता है और दूध हमेशा दूध ही रहता है, पानी का दूध कभी बनता नहीं। संयोग होने पर भी पानी का दूध जैसे नहीं बनता, वैसे संयोग होने पर भी शरीर आत्मा नहीं बनता, ना आत्मा कभी शरीर रूप हो जाता है, कभी न कभी जुदा मालूम पड़ने में आता है। तो आचार्य महाराज ने बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इस बात को समझाया है, ये साइंस है। जैन दर्शन में प्रधानता विज्ञान की है। क्या हमने एक आदमी को हमने पूछा, एक प्रश्न कि आप धर्म के क्षेत्र में हमने सुना है कि काफी समझते हो, तो हमको एक प्रश्न है, ऐसा करके बोला। आदमी बुद्धिमान था, काफी साहित्य पड़ा हुआ था, सब साहित्य पढ़े, रजनीश का भी पढ़े, दूसरा का भी पढ़े, तीसरा का भी पढ़े, सबका पढ़े, ले सकता है क्या है? इसको बुद्धि का शोषण ज्यादा होता है तो शक्ति का तो फिर कोई ना कोई काम तो होता रहेगा। सीधा एक प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या चीज है, हमने सीधा जवाब दिया कि धर्म एक साइंस है। क्या है? धर्म एक विज्ञान है। क्यों? कि लोग में ऐसी, समाज में ऐसी मान्यता है कि कुछ किसी न किसी प्रकार की रूढ़ी रिवाज जो बन जाती है उसको लोग धर्म कहते हैं। जैसे कोई जप तप करता है तो क्या धर्म करता है, पूजा भक्ति करता है तो क्या धर्म करता है, दयादान करता है तो क्या कहते हैं, धर्म करता है। हम कहते हैं कि वो कोई धर्म है नहीं, न धर्म का वो स्वरूप है, न धर्म का कोई कारण भी है इसमें, हमारा कोई धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं है उसको अधर्म कहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धर्म नहीं उसको अधर्म ऐसा कहो, और मैंने नहीं। तो धर्म क्या है? तो बात तो था तो वो ऐसे कुल धर्म से तो जैन था दिगंबर, तो वो कैसे धर्म विज्ञान है? वो कैसे? में एक सूत्र है हमारे शास्त्र में, ये सूत्र है कि वत्थु सहाओ धम्मो, क्या है, वस्तु का जो स्वभाव वो धर्म है। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है, उसी को धर्म कहते हैं। देखो इस कैसी वैज्ञानिक परिभाषा है धर्म की, डेफिनेशन जिसको कहते हैं। ये जैन शास्त्र के अलावा, जैन आगम के अलावा ऐसी धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा कहीं भी देखी नहीं जाती। इधर ही एक परिभाषा ऐसी है, वस्तु साहो धम्मो। तो यहां भी वस्तु विज्ञान से बात किया। देखो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, इसमें धर्म कहां आया? कि ऐसा उनका स्वभाव है वो धर्म है। एक वस्तु मैंने जीव, मैंने मैं अपने एक वस्तु हूं, जीव मैंने एक मैं वस्तु हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरी मौजूदगी है। मेरी मौजूदगी में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, मिलावट नहीं है मेरे में। क्या कहते हैं? एक में दूसरा मिल जावे उसको मिलावट कहते हैं। तो ऐसा मिलावट जीव वस्तु में क्यों नहीं है? कि एक के अस्तित्व में दूसरा का अस्तित्व नहीं पाया जाता, दोनों का प्रदेश भिन्न हो। वासे प्रदेश मैंने सत्ता, एक सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं है। और इस प्रकार से एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होने से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आधार आधे संबंध भी नहीं है। मैंने जीव का अस्तित्व शरीर के आधार से नहीं है, शरीर छूट जाता है, जीव छूट मरता नहीं है, जीव जिंदा ही रहता है, जीव कभी मरता नहीं। लोग ये कहेंगे फलाना फलाना मर गया, बात गलत है। कोई जीव मरा नहीं है, एक भी जीव मरता नहीं, एक भी नया जीव पैदा होता नहीं। ये तो आज का विज्ञान कहते हैं कि किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट जिसको कहते हो, तो नया उत्पन्न होता नहीं, न कभी वो खत्म भी होता है, किसका सर्वनाश कभी होता नहीं। रूप से रूपांतर होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है, शास्त्रीय परिभाषा में पर्याय से पर्यायांतर होता है ऐसा कहने में आता है, लेकिन जीव कभी नाश होता नहीं, न जीव की कभी उत्पत्ति होती है। इसलिए आधार आदेश संबंध नहीं है। जब देह के आधार से मैं जीता नहीं, जिंदा रहता नहीं, तो फिर खुराक के आधार से, अनाज पानी हवा के आधार से मैं जिंदा रहता हूँ तो बात रहती नहीं। शरीर नबला पड़ता है, जीव नबला पड़ता नहीं। नहीं खाने से सिद्ध भगवान को अनंत वीर्य, अनंत ताकत में से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरिहंत भगवान में तो विवाद है, पीताम्बर लोग ऐसा मानते हैं कि अरिहंत खाते हैं, दिगंबर मानते हैं कि अरिहंत नहीं खाते। अपन छोड़ो इस बात को, लेकिन सिद्ध भगवान तो नहीं खाते है, उसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें सितंबर दिगंबर दोनों एक मत है कि सिद्ध भगवान को देह नहीं है, देह में खाने पीने का होता है, जब तो अशरीरी परमात्मा है, वो खाते नहीं है तो दुर्बल हो जाते, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए परमाणु से जीव में शक्ति नहीं आती, जीव की शक्ति जीव में है। इस परमागम में जीव की शक्तियों का वर्णन पीछे आया है, पता है 47 शक्ति का वर्णन। इसमें पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व शक्ति। आत्मा में जीवत्व नाम की एक शक्ति है, वो शक्ति कितनी बड़ी है कि उतनी बड़ी है कि जिसकी हद नहीं उतनी बड़ी है, बेहद बड़ी है, वो अनंत है। शक्ति कभी सीमित नहीं होती, जैसे अग्नि है, एक अग्नि के कण में शक्ति कितनी, जिसको अपन तिखारा कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, चिंगारी। अग्नि की एक चिंगारी में कितनी शक्ति के सारे जगत को जला देवे, इतनी कितनी चिंगारी छोटी दिखती है, लेकिन शक्ति कितनी कि बेहद शक्ति है, जितना भी लाओ जल जाएगा, जितना भी आवे जल जाएगा। ऐसे आत्मा में जीवन शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, कितनी है, अनंत है। अनंत जीवत्व होने से आत्मा कभी मरता नहीं। देखिए, जिसको ऐसा अनुभव ज्ञान होवे उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। क्या सबसे बड़ा भय कौन सा है? जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको दूसरा किसी प्रकार का भय रहने का सवाल नहीं। जो वाघ सिंह से डरता नहीं, क्या वो चूहा से डरेगा? हाँ, बाघ सिंह से जो नहीं डरता वो चूहा से कैसे डरेगा? ऐसे जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको दूसरा कौन सा भय हो रहेगा कि एक भी भय उसको रहने का सवाल नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय है। इस शास्त्र में संवर के बाद निर्जरा का एक अधिकार है, उसमें उपात किया है आचार्य महाराज ने, कि सम्यक दृष्टि को किसी भी प्रकार का भय नहीं, आलोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, चोरी का भय नहीं, संरक्षण का भय नहीं, अकस्मात का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, वेदना का भय नहीं, किसी का भय भी नहीं रहता। क्यों? कि ये सभी प्रकार का भय संयोग आश्रित है, और आत्मा असंग तत्व होने से असंग स्वरूप का अनुभव में निर्भयता निशंकता उत्पन्न हो जाती है, कहीं भी भय रहता सबसे बड़ी बात है। सभी जीव को आत्म स्वरूप के असंग स्वरूप के अभानपणे में बेभानपणे में भय का होना अनिवार्य है। भय का उपयोग होवे तब तो मालूम पड़े ही पड़े, लेकिन भय की परिणति हो जाती है तो निर्भय रह नहीं सकता, इसलिए हमेशा दुखी है। संसारी जीव हमेशा दुखी ही है, क्योंकि इनको पता है कि कब शरीर छूट जाएगा मैंने, कब मैं मर जाऊंगा, कब मेरी संपत्ति चली जाएगी, कब मेरे परिवार में से कौन चला जाएगा, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना बड़ा ट्रैफिक है, अरे बम्बार्डिंग भी हो जाता है, कब क्या होगा कैसे मालूम पड़े, कब इनकम टैक्स का रेड आ जाएगा। भाई तो हमेशा भाई बना ही रहता है जीव को, तो भाई के परिणति बन जाती है। देखो इसको परिणति कहते हैं, हमेशा भयान्वित रहता है परिणति, उसको दुख 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 की परिणति चालू ही चालू रहती है। सम्यक दर्शन से सबसे पहला काम ये होता है, आत्मा निर्भय हो जाता है। निर्भय होने से भय का दुख मिट जाता है, एक सुखी हो जाता है, कोई किसी की उनको परवाह नहीं रहती, किसी भी प्रकार का भय की परवाह उनको नहीं रहती। ऐसी एक निर्भयता निशंकता के साथ हमेशा चालू रहती है, उसकी भी परिणति बन जाती है उसको, एक सबसे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। सर सर काटेगा तो चारित्र मोह का अल्प भय होगा, लेकिन सर्प ने मुझे काटा है ऐसा अनुभव नहीं होगा। क्या सर्प ने मुझे काटा है ऐसा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जीव को सर्प स्पर्श कर सकता नहीं है, शरीर को काटा है जीव को नहीं काटा है। सामने से आवे तो भले आवे, मेरे में आने वाला नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा उसको, पहले ज्ञान होगा है? तो सम्यक दृष्टि का प्रश्न करता है, मुनिराज का नहीं करते है। तो क्या है, चारित्र मोह जहां तक सम्यक दृष्टि को है अल्प भय होता है, मुनिराज को तो कुछ भय चारित्र मोह का भी होता नहीं। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में तो सर्प भी बहुत होते हैं, शहर में नहीं होते लेकिन जंगल में तो बहुत रहते हैं, आते हैं सर्प देखते हैं, वो विचलित नहीं होते, अपने स्थान से विचलित नहीं होते, और शरीर आकर के शरीर पर चढ़ जावे तो भी उसको दूर नहीं करते, हटाते नहीं अपने शरीर पर से। क्यों? उनको उतनी स्थिरता है अपनी श्रद्धा ज्ञान में कि आत्मा को वो काट नहीं सकता, आत्मा को वो खा नहीं सकता, आत्मा को वो स्पर्श भी नहीं कर सकता, और आत्मा चैतन्य वज्र है, उसमें कुछ हानि नुकसान वो नहीं कर सकता। शरीर काटे भी उनके शरीर को, ऐसा नहीं है कि मुनिराज को सर्प नहीं काटे शरीर को, इनके शरीर को काटे और आयुष्य पूरा होने वाला हो तो शरीर और आत्मा अपना क्षेत्र छोड़ देवे, भिन्न भिन्न हो जावे, तो आत्मा को क्या हुआ वहां, कुछ नहीं हुआ। जब मुनिराज का आत्मा को कुछ नहीं हुआ तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, शरीर को काटा, शरीर और आत्मा अलग हो गया, आत्मा को क्या हुआ इस वक्त, आत्मा कहीं और जगह चला गया उसके साथ शरीर का जहर जाता नहीं है, जहर चढ़ता ही नहीं आत्मा को, अज्ञानी को आत्मा को भी नहीं चढ़ता, ज्ञानी को आत्मा को भी नहीं चढ़ता। जहर की व्यापकता में आत्मा की व्यापकता नहीं, आत्मा की व्यापकता में जहर की व्याप्ति नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। ये जो सिद्धांत है आचार्य महाराज ने लिखा है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, उसका आधार आदेश संबंध नहीं है, तो ये इतनी एक सत्य हकीकत है, एक परम सत्य है कि इस परम सत्य को कोई जगत में मिटा सकता नहीं। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, देव हो या मनुष्य हो, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र वस्तु के स्वरूप में कोई हेर फेर कर सकता नहीं। ऐसी चीजें माने नहीं माने दूसरी बात है, लेकिन मानने से कोई वस्तु नहीं बदल जाती। हम कांच को हीरा माने तो उसकी कीमत नहीं आती, और हीरा को कांच माने तो उसकी कीमत नहीं चली जाती। चली जाती क्या? ये नकली रुपया बनाते कि नहीं? पहले चांदी के रुपये आते, और चांदी के नहीं बनाते, नकली बना देते ऐसे धातु के, सफेद धातु के। तो चांदी पर मोहर नहीं लगावे तो क्या उसका पैसा नहीं आएगा? आएगा, जो भाव है वो मिलेगा। और नकली धातु पर मोहर लगा दिया तो उसका पैसा मिलेगा क्या? पीछे फेंकेगा, ये नहीं चलने वाला, इधर नहीं लाओ ये, इसको ले जाओ कोई और जगह, ये बात हो जाएगी। इसलिए मानने से कोई, गलत मानने से कोई वस्तु बदल जाती है ऐसा कभी नहीं करता। ये एक तीसरी बात की सिद्धि कर दी, दो बात करके, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं अलग अलग है, और दोनों की, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग है, जब दोनों की सत्ता अलग 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 है तो उसमें से ये फलित होता है कि एक के आधार से दूसरा का आधेय संबंध नहीं रहता, आधार आधेय संबंध नहीं है। ये बात बहुत वजनदार की आचार्य महाराज। संसारी जीव को पर पदार्थ की आधार बुद्धि ही दुख का कारण है। पर पदार्थ की आधार बुद्धि में से पराधीनता होती है, और पराधीनता में दुख ही दुख रहता है, कभी सुख होता नहीं। बहुत सुंदर, अति सुंदर न्याय है ये, लॉजिक है बहुत बड़ा। इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप में दृढ़ रूप से रहने रूप ही आधार आदेश संबंध है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में रहता है, प्रतिष्ठा मैंने अच्छी तरह रहता है, दूसरे पदार्थ में आना जाना किसी पदार्थ को बनता नहीं है। दूध पानी नहीं बनता, पानी दूध कभी बनता नहीं है, ऐसी बात है, अपने में ही रहता है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अच्छी तरह रही है, प्रतिष्ठित मैंने अच्छी तरह रहा है। जगत की प्रतिष्ठा में तो प्रतिष्ठा का ये हो जाए, चलो इसकी आबरू चली गई, पहले बहुत अच्छा प्रतिष्ठान था, क्या कहते हैं, अच्छी गद्दी पेड़ी जमाई हुए तो हमारा ये तगड़ा प्रतिष्ठान है, लेकिन वो अनंत काल रहने वाला नहीं है, कुछ काल तक रहता है। और जीव में अपना स्वरूप की प्रतिष्ठा है, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा मैंने स्थापना, उसमें कभी कहीं गड़बड़ी होती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होती। जीव में से जीव कभी नहीं चला जाता, શરીર મેં જીવ ચલા જાયગા લેકિન જીવ મેં જીવ કભી ચલા જાયગા નહીં ઇતની દ્રઢતર પ્રતિષ્ઠા જીવ મેં જીવ સ્વરૂપ કી હોતી હૈ એસા અગર અચ્છી તરહ યથાર્થ રૂપ સે અપને જ્ઞાન મેં શ્રદ્ધાન મેં જજ ગયા તો ફિર હમે કોઈ ચિંતા નહીં કોઈ વિકલ્પ નહીં કોઈ ભય નહીં ક્યોંકિ મેરા મેરે સ્વરૂપ મેં સે જાને કા કોઈ સવાલ પેદા નહીં હોતા મેં મેરે સ્વરૂપ મેં અનાદિ અનંત રહેને વાલા હું મેરે સ્વરૂપ મેં ક્યા હૈ કે અનંત સુખ હૈ પ્રથમ તો આત્મા કે જીવ કે સ્વરૂપ મેં અનંત સુખ હૈ અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત શક્તિ મેરી મેને અનંત પુરુષાર્થ યે તો સબ હૈ હી લેકિન સબસે બડી બાત યે હૈ કે મેરે મેં મેરા અનંત સુખ હૈ યે સબસે બડી બાત હૈ ઇસલિયે મેરે સુખ કે લિયે મુજે કિસી કી કિસી કા આધાર લેને કી જરૂર નહીં હૈ દુકાનદાર કિતની ભી બડી દુકાન લેકર બેઠા હો બજાર મેં યે બડે બડે શોરૂમ લગતે હૈ કે નહીં લગતે હૈ લેકિન ગ્રાહક કે પાસ તો ગ્રાહક કે પાસ તો ઉસકો ચિંતા કરની પડતી હી હૈ પધારો પધારો ક્યા કહેતે હૈ હૈ કિતની ચિંતા કરતે હૈ ચાહે ગ્રાહક દુકાનદાર સે ભી ગરીબ હો સકતા હૈ યે જરૂરી નહીં કે દુકાનદાર જીતના પૈસે વાલા હો ગ્રાહક ઇસસે જ્યાદા પૈસે વાલા હો યે કોઈ જરૂરી નહીં કૈસા ભી આદમી આતા હૈ ખરીદને કો તો ઉસકો ક્યા કહેગા પધારીએ પધારીએ આપકો ક્યા ચાહીએ મેં ક્યા આપકી સેવા કર સકતા હું ક્યા બોલેગા હૈ આપકી મેં क्या सेवा कर कैसे देखो कैसी दीनता आती है बड़े बड़े आदमी को दीनता कैसी आती है हैं इसलिए तो दृष्टांत देता हूं अनुभव का तो दृष्टांत देता हूं ये प्राइम मिनिस्टर होता है वोट लेने के लिए गरीबों के बीच में जाता है कहां हिंदुस्तान में बस्ती इनकी ज्यादा है वोट बैंक वो है गरीब लोगों नेताओं के वोट बैंक होने से भले वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है लेकिन पहले दीनता करता है बाद में बैठता है क्या हालत है इसकी और फिर 5 साल के बाद वही परिस्थिति 5 साल तक भले ही हुक्म चलावे लेकिन बाद में फिर उसको लंबा हाथ करना पड़ता है मुझे कुछ वोट दे दो मुझे कुछ वोट दे दो ये हालत है यहाँ कहते हैं कि तेरे तेरे में तेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा उतनी है तुझे किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है कोई आधार लेने की जरूरत नहीं ऐसा स्थापन किया है यहाँ पर ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विषय में भिन्नपना के कारण आधार आधे संबंध रहित है ऐसा एक वैज्ञानिक तौर से पदार्थ विज्ञान की स्थापना पहले कर दी है आचार्य महाराज ने अब कहते हैं कि देखिए तुझे भेद विज्ञान कैसे करना है ये बात जो कही ये तो जो बात भेद विज्ञान कराना है उसका डेटा है मैंने वो प्राथमिक विज्ञान का स्थापन कर दिया है इस विज्ञान के आधार से भेद विज्ञान कैसे करे जिससे आत्मा को सुख शांति की प्राप्ति हो उसको सुख शांति मैंने धर्म की प्राप्ति हो धर्म मैंने सुख शांति की प्राप्ति हो ये बात आगे जाकर के आचार्य महाराज खोलेंगे आज का તૈયારી કરો ભગવાન તો શરીર છે, બાકી તો બધા જીવ છે, છોટે હો ઉમર મેં યા બડે હો, સબ જીવ હૈ. અપન કો તો છોટે બડે નહીં દેખના હૈ. જીવ કો અપને સુખ શાંતિ કે લીએ સબસે પહેલે વિચાર કરના ચાહીએ, મુજે દુઃખ ન હો ઓર મુજે સુખ હો. ક્યું કે શાસ્ત્ર મેં તો કિસી કા ક્ષયોક્ષમ હોય કિસી કા નહીં હોય, લેકિન સુખ દુઃખ કા પ્રોબ્લેમ તો સભી કો હૈ હી, છોટે મોટે સબકો, ગરીબ હો તવંગર હો કુછ ભી હો રાજા હો રંક હો સબકો સુખ દુઃખ કા તો સમસ્યા હૈ. તો સુખ દુઃખ કે માધ્યમ છે ઇસકા વિચાર કરે, સુખ દુઃખ કો કેન્દ્ર મેં રખ કરકે હમ વિચાર કરે તો જિસકો ભી જિસ પ્રકાર કી સમસ્યા હૈ કિસી ભી પ્રકાર કી હો, યે તો એક એસી માસ્ટર કી હૈ કે સભી દુઃખ મિટતા હૈ. એક ચાબી સે સભી તિજોરી ખુલ જાતી હૈ દુઃખ કી. કોઈ બાત એસી નહીં હૈ કે જિસમે કોઈ સમાધાન નહીં હો, મન કા સમાધાન હો હી જાતા હૈ. તો કહીં ભી પ્રશ્ન આવે અપને સમસ્યા કા કોઈ બાત નહીં હૈ. અગર સમસ્યા હી નહીં હો તો કોઈ ઇલાજ નહીં, સમસ્યા હો તો પૂછ સકતે હૈ. આત્મા કો આત્મા તો ફિર ચેતના હૈ, લેકિન સુખ સ્વરૂપ હૈ આત્મા, ચૈતન્ય સ્વરૂપી સુખ સ્વરૂપ હૈ. સુખ તો હૈ, ઉસકા ગુણ હૈ, ઉસકા સ્વરૂપ હૈ. વો તો દુઃખ હૈ, વો સુખ કા વિપરીત પર્યાય હૈ, વિપરીત અવસ્થા હૈ. इसलिए दुख भी आत्मा को विपरीतता में है और सुख अविपरीतता में है. सुख नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है आत्मा है. आकुलता दुख का स्वरूप है और निराकुलता सुख का स्वरूप है, ऐसी इनकी व्याख्या. तो कल्पना है, उसका कारण कल्पना है. नहीं, कल्पना ऐसा है, दो बात कि सुख का शब्द का दो अर्थ है, एक तो कल्पित सुख और एक वास्तविक सुख. क्या दुख को सुख मानना वो कल्पित सुख है, और आत्मा का निराकुल अवस्था होवे वो वास्तविक सुख है. वो कल्पित सुख माने ली वस्तु है, लेकिन जो सुख आत्मा में से स्वभाव से उत्पन्न होता है वो माना हुआ नहीं है, वो तो वास्तव में सुख है ही. जैसे आप ये कहेंगे कि दुख भी माना हुआ है, सुख भी माना हुआ है, लेकिन वो संयोग में माना हुआ है, आत्मा में ऐसा नहीं है. आत्मा तो सुख स्वरूप ही है, वास्तविक रूप से है, उसमें कल्पना नहीं है. सुख गुण है, सुख धर्म है, उसकी अवस्था जो पवित्र निर्दोष है जिसमें सुख है वो तो वास्तविक है, लेकिन जगत के पदार्थ में सुख और दुख की कल्पना है, वो माना हुआ कल्पित है. कल एक दोपहर की चर्चा में बात चली थी कि भाई हमको ये पीला रंग अच्छा लगता है और ये केसरी रंग अच्छा नहीं लगता है, तो ये मानने की चीज हो गई. वास्तव में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, दोनों कल्पित है, इसलिए सुख दुख की कल्पना बोलने में आता है. लेकिन आत्मा में सुख नाम का गुणधर्म है, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है. और उसका अनुभव जो सुख, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है, ऐसी बात है. ऐसा है, हाँ, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है. जैसे ज्ञान एक कल्पना नहीं है, ज्ञान आत्मा का धर्म है, वैसे सुख भी आत्मा का धर्म है, ज्ञान इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे सुख भी इसकी प्रॉपर्टी है। बात कुछ ठीक है, लेकिन ज्ञान सुख स्वरूप है, ऐसा ज्ञान का उसके रूप में, स्वभाव रूप में देखने का हमने प्रयत्न नहीं किया। फिर से, ज्ञान है वो स्वयं सुख स्वरूप है। क्या एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान को सुख का रूप है, लेकिन हमने ज्ञान को इस रूप में देखने की कोशिश कभी नहीं की। गुण अलग अलग है, फिर भी एक पदार्थ का गुण होने से वो सर्वथा भिन्न नहीं रह सकता। जैसे आप बाजार में गए आम खरीदने को, कैरी, आपको कैरी में कोई गुठली तो खानी नहीं, इसका छिलका भी खाना नहीं, आपको क्या खाना है? रस खाना है। तो रस में भी क्या खाना है कि स्वाद को खाना है, रूप, उसका रूप को खाना है, है? रूप को नहीं खाना है। फिर आप ये कहो कि हमें रस चाहिए, हमको गुठली छिलका नहीं चाहिए, तो मिलेगा आपको, निकाल करके देगा, निकाल करके देगा कि भाई कैरी चाहिए तो 10 रुपया किलो और रस चाहिए तो 25 रुपया किलो। लेकिन आप ये कहेंगे कि मुझे स्वाद चाहिए लेकिन कलर नहीं चाहिए, इस भाव कुछ भी ले लो आप, नहीं मिलेगा। ऐसे गुण है, वो गुण से भिन्न होने पर भी सर्वथा उसको भिन्न नहीं कर सकते, वो साथ में आता ही है। ज्ञान का ज्ञान रूप में अनुभव अगर होता तो सुख का अनुभव हुए बिना नहीं रहता। क्या किशोर भाई, ज्ञान का ज्ञान रूप में अनुभव होता तो सुख का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। ज्ञान का राग रूप में हम अनुभव कर रहे हैं क्योंकि राग उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो ज्ञान का राग